Interview with Shashwat Upadhyay at BHU campus on 2nd of May 2018, conducted by Ahili Chaudhary. The record begins now. Shashwat, थोड़ा सा अपनी पर्सनल हिस्ट्री बताओ. मतलब आप क्या पढ़े हो, फैमिली कहाँ की है, घर कहाँ है?
मेरा नाम, पूरा नाम शाश्वत उपाध्याय है. मैं बलिया उत्तर प्रदेश का हूँ. यहाँ बनारस से ये 140 किलोमीटर दूर है. और 12वीं तक मैंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की. फिर उसके बाद मुझे कविताओं में रुचि थी, तो मैं लिटरेचर की तरफ आना चाहता था, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी विषय चुना. और मैं यहाँ अभी सामाजिक विज्ञान संकाय में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, सोशियोलॉजी पढ़ता हूँ. और पारिवारिक इतिहास यही है कि पिताजी गांव पे रहते हैं, माताजी वहीं गांव पे रहती है. एक छोटा सा अपना स्कूल है, खेतीबाड़ी है और गांव का पद प्रतिष्ठा है जो मेंटेन करना होता है. तो
घर में और कौन कौन है, भाई बहन?
हाँ, संयुक्त परिवार है, तो काफ़ी बड़ा परिवार है. और ऐसे अगर मैं व्यक्तिगत बताऊँ तो माताजी हैं, पिताजी हैं, दादी माँ हैं और मेरा छोटा भाई है जो इस वर्ष 12वीं का छात्र है, और छोटी बहन है जो जिसने इस वर्ष 11वीं की परीक्षा पास की.
तो इस यहाँ पे BHU में आने के बाद इन लोगों, मतलब ये जो सारी मूवमेंट्स या चीज़ें हो रही थी, उसके साथ कैसे जुड़े हैं आप?
मैं जो है जब यहाँ एडमिशन मेरा हो गया, असल में मैं इंजीनियरिंग के चपेट में आ गया था, तो मुझे यहाँ से BA करना था. तो घर से ही ऐसा था कि मुझे, मतलब मैं घर पे काफ़ी जद्दोजहद के बाद में BA कर रहा था. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सामान्य नहीं थी, जैसे कि क्लासेस का ना चलना और इन तरह की चीज़ें ऐसी थी जिन लगता था कि बदलने चाहिए. और फिर जब मैं जिस वर्ष मेरा एडमिशन होना था, उस वर्ष यहाँ लाइब्रेरी को लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था. करीब 9-10 लोग सस्पेंड हुए थे, उन्हें जेल तक जाना पड़ा था. तो उन लोगों को में से लगभग 6, उन 9 में से लगभग 6 मेरी ही विद्यालय के, जिस जहाँ से मैंने 12वीं की पढ़ाई की, विद्या मंदिर था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के का जो उपक्रम है, तो वहीं से वो लोग पढ़े हुए थे. तो उन सारे लोगों को मैं जानता था, उन लोगों से मैं जुड़ा हुआ था. तो एडमिशन लेने से पहले से ही मैं इस आंदोलन को देख रहा था. तो और फिर जब बहुत सारी चीज़ें थी जो ठीक नहीं थी, और फिर उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादती होने लगी अचानक से, वो सस्पेंड कर दिए गए और लगभग 1-1.5 साल तक वो लोग काफ़ी परेशान रहे. तो उन लोगों के साथ जुड़ना होता गया और फिर उसके बाद तो सितंबर में अगले साल चीज़ें हुई. तो मतलब मई में जिस वक्त एडमिशन हुआ, जब मुझे एंट्रेंस देना था 14 मई को, जब लाइब्रेरी का आंदोलन हुआ था 2016 में, तो उस वक्त मैं 2 मई को इन लोगों का आंदोलन शुरू हुआ था, 2 मई 2016 को, और 14 मई को मैं जब एंट्रेंस देकर फ्री हुआ, उसके बाद फिर 26 मई को गिरफ्तारी हुई. तो वो सारी चीज़ें फेसबुक के माध्यम थे, या फिर मैं बनारस में ही था तो देखने को मिलती थी अखबारों में या फिर इर्द गिर्द कैंपस के अंदर. तो फिर इनका सस्पेंशन हुआ, उसके बाद तब मेरा एडमिशन हो गया. फिर मैं लोगों से जुड़ता रहा, बातचीत होती रही, मिलते रहे. ये हमारे स्कूल के एलुमनाई थे, तो संबंध भी था इनसे, तो मैं मिलता रहता था. परेशान रहते थे लोग काफ़ी अपने एडमिशन को लेकर और अपनी चीज़ों को लेकर. फिर धीरे धीरे इनसे जानने को मिलता रहा कि और क्या क्या परेशानियाँ हैं. बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो बहुत दिक्कत कर रही थी.
तो मतलब कैसे, मतलब आपसे मिलना जुलना था कि, और कैसे इंगेज कैसे हुए आप?
मतलब उन लोगों से तो मिलना जुलना था, जैसे दीपक हुए, आकाश, रोशन. आकाश मेरे बैचमेट थे, इवन 12वीं की परीक्षा तक आकाश मेरे साथ थे. रोशन हमारे सीनियर थे. उसके बाद बहुत सारे लोग बलिया के थे, आर्य भारत थे, ये सारे लोग हमारे साथ के थे सीनियर्स से. तो इन लोगों से जुड़ते रहे, मिलते रहे. उसके बाद फिर कुछ आंदोलन होते रहे. लाइब्रेरी को ही लेकर मुख्यतः ये था, तो मेरा जुड़ाव इसीलिए था कि लाइब्रेरी जो थी वो खुलनी चाहिए. तो वो सारे लोग जिस भी तरीके से परिसर के अंदर लाइब्रेरी को लेकर प्रयासरत होते थे, या उस आंदोलन से रिलेटेड कुछ भी करते थे, चाहे वो सिग्नेचर कैंपेन हो, चाहे वो किसी से मिलना हो, चाहे कोई इंटरव्यू हो, तो मैं उन लोगों के साथ रहता था, उन लोगों से जुड़ता रहता था. फिर आगे क्या हुआ कि लाइब्रेरी वाले आंदोलन को जारी रखने के लिए एक और परिसर के अंदर, मतलब विरोध जैसा कुछ कायम करने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी जैसी संस्था का निर्माण किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग थे पार्टी लाइन से ऊपर आकर. NSUI से भी लोग थे, वो सारे लोग थे. अभी जॉइंट एक्शन कमेटी भी चली रही है. तो फिर मुझे लगा कि इस फ्रंट से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो सारे लोग, मतलब मैं लिटरेचर से था और लिटरेचर को लेकर भी जहाँ कुछ समस्या होती थी वहाँ वो लोग हमेशा साथ खड़े रहे. तो एक यह भी स्वार्थ था, दूसरा ये कि ठीक ही काम कर रहे हैं. जैसे लिटरेचर को लेकर क्या है कैंपस के अंदर कि मधुबन गोष्ठी एक चलती है, 5-7 सालों से चल रही है. तो वो लोग कविताएं करते हैं, मैं भी उससे जुड़ा हुआ, वो मतलब वो सीनियर्स ने शुरू किया है. तो उसमें जब कभी भी कुछ इस तरह का हुआ कि हाँ आक्षेपण हो रहा है, या गेट खुलने 6 बजे मधुबन बंद हो जाता है, गोष्ठी कभी 6:30 तक चलती थी, तो इस बात को प्रशासन तक पहुँचाने में मदद करने वालों में JC के लोग थे, या फिर वो सारे लोग थे जो अपने आंदोलन में थे. तो कुछ भी गड़बड़ होता था, वो सारे 9-8 लोग आगे आते थे हमेशा, हर बार. और उन लोगों पर मतलब टीका टिप्पणी भी होती थी, तो मुझे लगता था कि कम से कम इन लोगों के साथ खड़े रहने चाहिए, तो इससे जुड़ते गए जुड़े रहे इन लोगों से।
फिर अब सितंबर वाला जो पूरा वो हुआ, उसमें क्या रोल रहा आपका?
मतलब एक तरह से जब मई के बाद, मतलब पूरा एक साल बीत गया, और मई में ही 4 मई को इन लोगों का सुप्रीम कोर्ट से आया कि ये लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये कम से कम एक तरह से बल मिला कि ठीक है, कुछ अच्छा हो रहा है, कम से कम एग्ज़ाम तो दें, ईयर बैक तो नहीं, 2 साल का जो सस्पेंशन था वो रद्द हुआ, और एक जीत जैसा था। तो लेकिन इसको सेलिब्रेट नहीं किया गया, ये था कि लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, जो अब तक भी नहीं खुली है। उसके बाद क्या हुआ कि मई के बाद जो सितंबर में, 23 सितंबर से पहले मेरे व्यक्तिगत जीवन की स्थिति ये थी कि 14 सितंबर को मेरे बड़े भाई के सर में चोट आई थी, तो वो ट्रामा सेंटर में एडमिट है, तो मैं दिन भर रात भर वहाँ इन्वॉल्व रहता था। 23 सितंबर की शाम को 5 बजे मुझे एक मेरे मित्र का कॉल आया कि उसकी एक बहन के साथ बदतमीजी हुई है, वहाँ गेट मतलब वो जो चौराहा है मधुबन के पास, उस चौराहे पे, आप कहाँ हैं? तो मैं उस वक्त अस्पताल में था, सिटी स्कैन वगैरह कुछ था, बहुत गंभीर चोट थी सर में, तो वो एडमिट थे, तो मैं वहाँ था। मैंने कहा कि जय नाम उनका, तो मैं बोला कि अभी आप जो है मतलब आराम से, शाम के 7 बज रहे हैं और इस वक्त मेरे आना तो मुश्किल है, मैं कुछ लोगों को कॉल कर देता हूँ और एप्लीकेशन लिख के आप दे दीजिए, कल उससे बात करते हैं। लेकिन साथ फिर मैं अस्पताल में इन्वॉल्व हो गया, मैंने यशवंत सिंह, एक मित्र हैं विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मतलब यार यशवंत आप जाइए। यशवंत उस वक्त जब हल्ला गुल्ला हो रहा था, उस वक्त 7:30 बजे यशवंत वहाँ मौजूद भी थे, वो प्रॉक्टर ऑफिस भी गए, एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन रात को कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हुआ क्या, फिर मैं 10 बजे करीब मुझे पता चला कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है, एप्लीकेशन दे दिया गया है रात को ही। फिर मैंने जय को बोला मैं जय सुबह मिल पाऊँगा आपसे। फिर क्या हुआ कि उसी रात चीफ प्रॉक्टर ने अपने दलबल के साथ उस हॉस्टल में प्रवेश किया जहाँ की वो लड़की थी, जो मित्र थी जाकी, उनके साथ वहाँ पे ये कहा गया, उस मतलब उस कंप्लेन में दबाव काफ़ी होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा, वो गार्ड से पहले तो वहाँ बदतमीजी क्यों उस लड़की के साथ। फिर अंदर जाने के बाद ये लोग गए पुलिस वाले, और फिर नया नियम बांध दिया कि 6 बजे के बाद अभी गेट ही नहीं खुलेगा हॉस्टल का। पहले ये था कि 7 बजे तक आप बाहर, मतलब त्रिवेणी का नियम ये था कि 7 बजे के बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते, अगर नहीं निकले हैं तो आने का तो 10 बजे तक आइए, लेट एंट्री हो जाएगी वो, लेकिन जाने का हॉस्टल से बाहर अगर 7 बजे तक नहीं, 6 बजे तक नहीं निकले तो 7 बजे तक नहीं निकले तो नहीं निकल सकते। उस पर्टिकुलर हॉस्टल का ये था कि अब आप 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगे वो लोग। और फिर लड़की को भी बहुत व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी कुछ बोला गया कि तुम मतलब ऐसे कैसे बाहर चली गई, ये वो सारी चीज़ें। रात को मुझे पता चला, और फिर कुछ कुछ सीनियर्स के माध्यम से, कि लड़कियाँ जो है सोच रही हैं ऐसा कुछ की मतलब उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके खिलाफ, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। रात को बात हुई मेरी मेरे कुछ सीनियर से जो उस हॉस्टल की हैं या फिर त्रिवेणी के अंदर रहती हैं, उन्होंने कहा कि हम सुबह प्रोटेस्ट करेंगे, तो हमें लगा कि ठीक है, हम बोले करिए। फिर हमने कुछ कुछ लोगों से बात करी, हमें लगा कि हमें चलना चाहिए उनके साथ। सुबह 6 बजे उन्होंने, मतलब मैंने अपने साथ के सारे लोगों को कहा जो मेरे साथ के फर्स्ट ईयर के थे, मैंने इन लोगों को भी जो लाइब्रेरी मूवमेंट के या फिर इस तरह से सक्रिय लोग थे विश्वविद्यालय के जिन्हें मुझे बताना चाहिए, मैंने यशवंत तक को बताया, दिवाकर भैया, तमाम लोगों को मैंने कहा, कॉल किया, बात हुई उनसे कि हाँ सुबह हम लोग चलेंगे। मतलब वो लड़कियाँ सुबह निकलने वाली, तो हमें लगा कि हमें उनके साथ रहना चाहिए किसी भी तरीके से अगर वो निकलेंगी। तो सुबह 6 बजे त्रिवेणी छात्रावास की, वो 5 छात्रावास जो है उनमें से करीब 500-700 की संख्या में लड़कियाँ निकली क्यू में, और रात भर उन्होंने बाकायदे अपना तख्ती वगैरह बना रखा था कि वो नहीं करेंगी। और वो जो निकलना था, वो पिछले 3 सालों में जैसा परिवेश था विश्वविद्यालय का, मतलब मेरे इनरोल होने, मैं अभी 2वें वर्ष में हूँ, तो मेरे इनरोल होने से 1 साल पहले से जो वाइस चांसलर थे उनके द्वारा तमाम तरह के जो तुगलकी फरमान थे उसके लिए जो नियम कानून थे ना, उसके एवज में वो आया हुआ था। जैसे हर बार ऐसा होता था ना कि कोई छेड़खानी हुई तो उस लड़की को ही टारगेट कर लिया गया, उसको इस तरह से धमकी दे दी गई, या VC के इस तरीके के बयान ऐसे ऐसे थे ना कि मतलब ऐसा लगता था कि जो सबसे बड़ा हमारा है, जो जिस समय अपनी बात कहनी कहना है, जो हमारे लिए कुछ कर सकता है, वही इस तरीके की बात कर रहा है, तो मतलब क्या ही कर सकते हैं। तो बाहर निकलना ना ये था कि VC तो हमारी बात सुन नहीं सकते हैं, तो हमें किसी न किसी माध्यम से तो दिखाना ही अपनी चीज़ों को। तो मतलब लगभग लड़कियों के साथ किसी न किसी तरीके की समस्या हो चुकी थी, वही सड़क पर थी, वही 3 दिनों तक रुकी भी रही। तो ये लोग सारे लोग बाहर गए लंका गेट पे, वहाँ बैठे, और फिर जो है ये कोई प्लान नहीं था, कोई तय नहीं था कि क्या होने वाला है। हम लोग इसलिए थे क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे, वहाँ मेरे जानने वाले काफ़ी सीनियर्स थे, वहाँ वो सारी लड़कियाँ थीं जिनको मैं जानता हूँ, या वो सारी लड़कियाँ थीं जो जिनके लिए वहाँ खड़ा होना चाहिए। तो हम सारे लोग वहाँ खड़े रहे, फिर बढ़ते 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 आंदोलन इस तरीके का हुआ।
ये जो तीन, मतलब तीन दिन करीबन था, दो दिन ऑलमोस्ट जो हुए थे, उस दौरान आपका इन्वॉल्वमेंट क्या क्या रहा, मतलब आप वहाँ क्या कर रहे थे?
मतलब उस दिन तो सुबह 6 बजे से और रात के 11 बजे तक मैं था, तो फिर मैं गया, फिर रात के 3 बजे हम लोग वापस आए, मैं वापस आया। तो मतलब 3-4 घंटे पहले दिन में नहीं था, रात के 3 बजे जब सब, मतलब कुछ लड़कियां वहां मौजूद थी, तो पहले दिन 6 बजे से 10 बजे तक तो वहां लड़कियां थी, लड़के थे। फिर धीरे 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 लड़कियां जुड़ना शुरू हुई। पहले दिन का ये था कि त्रिवेणी की लड़कियाँ थी, उसके बाद दोपहर थी, धूप का भी सीन था, बारिश तक का सिचुएशन सितंबर में सब होता ही। रात को क्या मतलब, फिर त्रिवेणी की लड़कियाँ कम होती गई सीनियर्स में। उसके बाद महिला महाविद्यालय में की भी लड़कियाँ जुड़ना शुरू हुई शाम को 5-5 बजे से, वो लोग बैठना शुरू की, लेकिन उनके साथ त्रिवेणी का गेट 11 बजे तक खुला रह सकता था, महिला विद्यालय गेट 8 बजे बंद हो जाता था। तो ये हुआ कि अब क्या, अच्छा किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब अगले 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है, ये कुछ तय नहीं हो पा रहा था। और बैठे बैठे फिर ये हुआ कि 8 बजे त्रिवेणी में महिला महाविद्यालय में लड़कियां चली गई जिनका गेट था, कुछ कुछ रुकी, लगभग लड़कियां महिला महाविद्यालय की 8 बजे अंदर चली गई, क्योंकि वहाँ बहुत डर है, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बच्चियाँ रहती हैं, वहाँ अलग तरीके का डर है उनको। मतलब वार्डन तो उनके लिए तीसरी चीज़ हो जाती है, हाउस कीपर्स तक की डांट उनको सुनना पड़ जाता है, गार्ड बोल देता है कि तुम इतने देर तक कहाँ घूम रही थी। अब तो खैर, मतलब उस वक्त तक स्थिति ये थी ना कि गार्ड आपसे पूछ सकता है तुम क्यों घूम रही हो, या वो आपका चरित्र चित्रण कर सकता है और आप सुन लेंगी, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मतलब कोई कल्चर ही नहीं था ना कि आप उलट के बोलें। तो वो 8 बजे सब लगभग चली गई इसी डर से कि अब बाहर रहेंगे तो मे बी कि हमें व्यक्तिगत हो सकता है, और लाजिम भी था डरना उनका, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए लोग शांतिपुर ढंग से अनशन कर रहे हैं, तो वो सस्पेंड हो गए 2 साल के लिए। कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा, मेरे पिता नहीं चाहेंगे कि मैं इस तरह से आंदोलन करूं, या मैं सक्रिय हूं, या मैं कुछ किसी तरीके का काम करूं। उन्हें नहीं पता है कि मैं इस तरीके से उस 3 दिन आंदोलन में भी था, या फिर मतलब तो मध्यम वर्ग के परिवार तो नहीं चाहेगा। और तो वो लोग 8 बजे चले गए, लेकिन हुआ क्या कि 9 बजे गेट खोल गए महिला महाविद्यालय का, कम से कम 1000 लड़कियाँ बाहर आ गई। अब अंदर जो भी हुआ होगा, उनकी चेतना जगी, उनको लगा कि उन्हें बाहर आना चाहिए, बाहर आ गई करीब 9-8-900 की संख्या में। त्रिवेणी की लड़कियां कम होती गई 250 लोग, फिर भी मतलब पूरी रात कम से कम 1200-1300 लड़कियां बाहर थी पूरे उसमें, रात भर लगभग रहीं। फिर मैं चूँकि सुबह 6 बजे से था, और वहीं पे कमरा है मेरा ट्रामा सेंटर के आगे फ्लैट, तो मैं चला गया 10-10 बजे। मैंने एक स्टेटस लिखा फेसबुक पे कि ऐसा हो रहा है, और रात भर मतलब उस दिन से दिन भर में लगभग बात सबने अपने अपने फेसबुक स्टेटस डाले थे, लाइव किया था। बहुत बड़ा ये मतलब मोमेंट नहीं बन रहा था इतना, लेकिन ये था कि आसपास भर में लोग थे, मेरे फ्रेंड लिस्ट में जर्नलिज्म के काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मैंने लिखा था कि मीडिया के लोग संज्ञान लें, तो वो काफ़ी शेयर हुआ, 150-200 शेयर थे उसके, 250 करीब। तो फिर मतलब धीरे 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 लगभग सबकी पोस्ट की रीच जो BHU में हैं लोग बढ़ती गई, हर लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा देखे जाने लगे, बहुत सारे पेजेस हैं BHU बस वगैरह के लाइव देखे जाने लगे, तो ये लगा कि मामला अब जो है आ रहा है। मोदी जी भी आने वाले थे, तो मोदी जी के आने से बहुत कुछ वो नहीं था, लेकिन ये था एक आकर्षण था कि अब इनका क्या होगा। तो पहले दिन तो यही हुआ कि मतलब, फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि हमें ये लगा कि और भी लोगों को, लड़कों को भी, तमाम लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए इसमें, VC का से मिलना है उन्हें, बस यही एक मांग थी कि VC आके हमें आश्वस्त करें कि इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, प्रैक्टोरियल बोर्ड होते हुए भी, और वो मतलब जिम्मेदार लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे से, उस लड़की को ये कहा गया कि तुम 6 बजे घूमोगी तो तुम्हारे साथ छेड़खानी नहीं होगी, और विजुअलाइज फैकल्टी की कंडीशन ये है कि मतलब वहाँ मूर्ति बनाने वाले, मतलब तमाम तरह के डिपार्टमेंट है, तो कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें रात रात भर लोगों को रुकना पड़ता है, वो प्लसर अपेरी से इस तरह के उनके मतलब काम होता है ना कि वो 6 घंटा छोड़ना पड़ेगा आग पे, तो देखना होता है 6 घंटा, अगर 6 बजे शुरू किया तो 12 बज गया, तो मतलब इस तरह का होता है कि उन लोगों को रात भर रुकना पड़ सकता है। ऐसे में अगर वो 7 बजे जा रही है, जबकि बतौर नियम 9 बजे तक बाहर आ जा सकता है, और गार्ड वहाँ मौजूद है, वो ये कह रहा है कि तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं होगी, तो क्या होगा। तो ये सब तो रोष था ना उन लोगों के मन में, तो फिर ये फूटा और
ऐसा हुआ।
तो जो लास्ट सेकंड डे में जब लाठीचार्ज वगैरह हुआ उस टाइम पे आप कहाँ थे?
दूसरे दिन मतलब हम लोग दिन में ये सोचा हम लोगों ने कि हम ये क्लासेस में जाके लोगों को बोलेंगे कि आप आइए, आप चलिए वहाँ बात की जाए, चलिए आप वहाँ बात कीजिए। हम लोगों ने क्लासेस में दिन में चारों तरफ जा जाके हर डिपार्टमेंट के हर क्लास में जितना कर सकते थे कि लोग आंदोलन कर रहे हैं चला जाए, तो ये सारी चीज़ें हुई।
लोगों ने मोबिलाइजेशन,
हाँ, लोगों से, लोगों को इन्वॉल्व, गर्ल्स हॉस्टल के गेट बाहर खड़े होके कि आप लोग चलिए, आप ही लोग आंदोलन है, इस तरीके से। दूसरे दिन क्या हुआ ना कि जब इन लोगों को लगा कि बहुत बात बढ़ जाएगी, तो वीसी ने बहुत सारे, मतलब ऐसी कंडीशन थी ना कि एक बार ये हुआ, उनके प्रतिनिधि आते थे हर बार, और रिजिडिटी थी, जिद था, जो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कोई भी कि ये सही है कि गलत है। जैसे उनका तर्क था कि वीसी यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनके उनके साथ कोई बदतमीजी कर सकता है, कोई दो झापड़ मार दे, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये तो इस पर सोचने लगता था आदमी कि यार हो सकता है सच बोल रहे हैं वीसी, मतलब ऐसा सिचुएशन में जब पूरी अनियंत्रित भीड़ है, हो सकता है कोई बदतमीजी ही कर दे। लेकिन ऐसा क्या कि मतलब आप क्यों हैं फिर वीसी, आपके साथ सुरक्षा गार्ड क्यों है, तो बहुत सारे तर्क अपने दिमाग में खुद ही चल रहे थे। तो हम लोग, मैं तो नितांत, अगर मेरी राय ली जाए तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या होने वाला है। लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ी बात थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में, जहाँ टोक नहीं सकते हैं आपको अगर गार्ड बोल रहा है कि आप क्यों घूम रही थी, और इतना बड़ा वो हो रहा है बीए की और एमए की, लोग बाहर आके सड़क पर बैठे हुए हैं, तो मतलब मेरे लिए तो ये था कि इन लोगों को कैसे भी उठने नहीं देना, और कुछ ऐसा ले के जाना है नियम कानून कि मतलब आगे के लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि अगर वो ख़त्म होता आंदोलन ना, अगर लाठीचार्ज नहीं होता, अगर वो समाप्त हो जाता, तो फिर आज स्थिति ये होती कि मतलब मैं भी डरा हुआ होता बोलने से। मतलब 10 लोगों के नाम पे नोटिस आई, जितने लोग थे, और लगभग 50 लोग इससे प्रभावित हुए, उनको ये था, और सस्पेंशन तो सामान्य था। अब हमें ये लग रहा था कि हो ही जाएगा सस्पेंशन, और वो लाजिम था अगर वाइस चांसलर पर तमाम तरह के दबाव नहीं बने होते, या इस तरह का मीडिया का प्रभाव नहीं बना होता है, इस तरीके से आंदोलन एकजुट नहीं बना रहा होता, तो वो सत्ता था। और फिर जो परेशानी मैंने देखी थी 8-9 लोगों को, इतनी हिम्मत लगभग सब में नहीं होती है, तो ये डर था उन लोगों को। दूसरे दिन ये हुआ ना कि शाम को 4 बजे कोई प्रतिनिधि आए उनके, मतलब चीफ प्रॉक्टर, और उन्होंने कहा कि वीसी महिला महाविद्यालय के अंदर आके मिलेंगे लड़कियों से। तो चूंकि वो मुझे जहाँ तक बाद में वीसी आए नहीं, तो ये प्लान था कि तितर बितर कर दिया जाए भीड़ को, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, और फिर मतलब हटा दिया जाएगा। तो कुछ लड़कियाँ वहाँ से उठ के महिला महाविद्यालय के अंदर जाके बैठी, महिला महाविद्यालय में पहले से लड़कियाँ थी, वो वहाँ आ गई कि अब वीसी यहाँ आएंगे। और हुआ क्या कि उन्होंने समय दिया था 4 बजे कि वो 4 बजे आएंगे, 6 बज गया, वो आए ही नहीं, तो कब तक भीड़ रुकेगी, कब तक। और जो प्रोफेसर्स थे इनका तो मतलब अस्तर ही समझ में नहीं आता है अब तक का क्या आलम है, कि कई ऐसी महिला प्रोफेसर्स हैं जो व्यक्तिगत तौर पे टारगेट करती रहीं उस दौरान भी, अब तक उनका ये आलम है, पता नहीं वो क्या चाहती हैं, अगर मतलब कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम जो भी, वो जितना भी अस्तरहीनता दिखा सकते थे वो हमारी प्रोफेसर्स हैं। लेकिन उस वक्त भी वो कुछ 4-5 चुनिंदा लोगों को टारगेट करती रहीं कि तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये वो, वहाँ भी 2 घंटा उन लोगों को बरगलाए रखा। फिर वो लड़कियाँ बाहर निकल गई 6 बजे करीब, भयंकर रूप में, मतलब क्रोध भी था, बोल के नहीं आए, और वो कुछ बाहर गेट पर चली गई। उसी वक्त करीब शाम हो गई, कुछ लड़कियाँ जाके बैठ गई वीसी ऑफिस आवास के बाहर। अब ये था कि कुछ साथ के लोग वहाँ भी थे वीसी आवास के बाहर, कुछ लोग लंका गेट पर भी थे, मतलब 2 जगह भीड़ अब बैठी हुई थी शाम को 7 बजे करीब। फिर क्या हुआ कि भीड़ बैठी रही, कुछ बहुत ज़्यादा सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो मैं उस वक्त लंका गेट पे था, पीएससी लगी हुई थी, पहले दिन ही पीएससी आ गई थी, अब पूरी बकायदे पीएससी लगी हुई थी, और अंदर भी प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग थे। 10-10:30 बजे करीब पहला लाठीचार्ज हुआ, और हुआ ये कि बहुत सारे दीपक वगैरह हमारे साथ के जितने भी सीनियर्स थे, तो ये हुआ कि वो लोग वहाँ थे, तो हमने ये सोचा कि अब चूँकि रहना तो है ही, तो कुछ लोग पहले डीसी आवास के पास चले जाते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं। मैं उस वक्त अपने कमरे पे चला गया, 10:30 बजे करीब मैं पहुँच रहा था, फिर हमारे किसी एक ग्रुप में ऑडियो क्लिप आई एक मित्र की कि डीसी आवास के बाहर लाठीचार्ज हुआ है, ऐसा मतलब ऑडियो आया। तो मैं घर न जाके मैं वापस आने लगा कि अब तो लाठीचार्ज हो गया, चलना चाहिए। तो मैं अपने आवाज़ से 200 मीटर तक आया था ट्रामा सेंटर तक, मतलब लंका गेट से लगभग 300 मीटर दूर था। तब तक मेरे कुछ सीनियर्स का कॉल आया कि तुम कहाँ हो, मतलब आपस में हम लोग एक दूसरे को ट्रेस करते रहे कि ये कहाँ है, किसको लाठी लगी। मुझे पता चला गौरव हमारे सीनियर हैं उनको लाठी लगी, गौरव पुरोहित का हाथ टूट गया था, वो पहली लाठी उनको लगी थी और वो प्रोक्टोरियल बोर्ड के किसी अधिकारी ने चलाई थी। उसके बाद फिर आदेश हुआ उनको कि लाठी चार्ज हो जाए, तो मतलब ये था कि अब लाठी चार्ज हो रहा है तो वहाँ आके पिटना एक भारी मूर्खता होगी। आप लहंगा गेट पर चले आए, क्योंकि भीड़ कम थी, लिटरली पुलिस ज़्यादा थी और उनको मारने का आदेश था तो मारेंगे। ये लोग क्या हुआ कि महिला महाविद्यालय के गेट पर भी लड़कियाँ आके बैठी हुई थी, पुलिस आई और लाठी चार्ज शुरू कर दिया उन लोगों ने महिला महाविद्यालय के गेट पर बकायदे। एक लड़की के स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी, काफ़ी सारी लड़कियों को चोट लगी, फिर ट्रामा जाना हुआ, फिर लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगी। पीएससी हॉस्टल रूट में आ गई, हॉस्टल में जो हॉस्टल के लोग थे, बाद में ये यहाँ तक ज्ञात हुआ कि मतलब हॉस्टल के भी लड़के निकल के बाहर आए पीएससी को करने के लिए। और फिर वो जो गुरिल्ला युद्ध होता है बाहर, मतलब इवन गेट के बाहर निकल के छतुपुर में जो हॉस्टल है वहाँ घुस घुस के पीएससी ने मारा। ये सारी बातें इसलिए नहीं आई आगे, क्योंकि अब जो उद्देश्य था आंदोलन का कि कुछ नियम कायदे बदलते या वाइस चांसलर को इस बात का आभास होता कि उन्होंने ठीक नहीं किया, तो फिर वो छुट्टी पर चले गए और यही सारी चीज़ें हुई। दूसरे दिन लाठी चार्ज 10:30 बजे करीब हुआ।
आपके घर वालों को कुछ पता चला था इसके इसके बारे में और उनका क्या रिएक्शन?
घर वालों का ये था ना, बहुत सारे दुष्प्रचार किए गए 2 दिनों में, हद स्तर के। मतलब मैं आंदोलन के बाद 25 तारीख को लगभग घर गया, तो ये तो पता था, मैं मम्मी को पता था कि मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें, पिताजी को नहीं पता था। लेकिन मीडिया में बकायदे बात थी, पूरे देश के मीडिया में बात थी, पूरे देश भर में ये था कि लड़कियों पर लाठी चार्ज हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इतने घटिया तरीके से दुष्प्रचारित की गई थी ना, कि मेरे पिताजी ने मुझे बाइक पर घर तक ले जाते हुए ये कहा कि अब जब तुम लोग मालवीय जी की मूर्ति पर लड़के जब काली पोतनी की बात करेंगे तो लाठी चार्ज तो होगा ही, मेरे पिता का स्टेटमेंट था। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं था, और फिर मैंने उनको समझाया, वो माने भी, मतलब पूरे रास्ते समझाने के बाद, चूँकि मैं इन्वॉल्व था और मैं बता सकता था कि आप सबूत मांगिए, कहीं कोई तस्वीर आई है लाठी चार्ज की, तो तस्वीर है, वीडियो आपने देखा, न्यूज़ पर भी देखा, लेकिन आपने देखा नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं होगा लाठी चार्ज। लेकिन ऐसे ऐसे मेरे घर जैसे, मेरे गाँव में 600 घर हैं, पूरे मेरे ज़िले में कितने घर होंगे, हर घर में टीवी है, तो इस तरह की बात एक सामान्य आदमी जो 10 बजे से 5 बजे तक नौकरी करता है उसके बाद वो टीवी देख के चीज़ों को समझ लेगा। तो बहुत सारे चैनलों के माध्यम से, बहुत सारे लोगों के माध्यम से, फेसबुक पर इस तरीके की चीज़ें, और झूठ तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाने वाली बात है, तो वो हो गई कि लाठी मालवीय जी की मूर्ति पर काली पोत दी गई थी, या बाहर से लोग आए थे, या फंडिंग हुई थी, तमाम तरह की चीज़ें ना इतने शानदार तरीके से आरोपित कर दी गई कि एक सामान्य व्यक्ति जो है जिसको बहुत मतलब नहीं है उसे ये लगा कि हाँ, मतलब वो नहीं ले पाया इस बात को कायदे से कि हाँ लाठी चार्ज हुआ है या लड़की के साथ गलत हुआ है। उसे ये लग रहा था कि काली पोत दी गई है, या उसे ये लग रहा था कि मतलब लड़कियाँ जो हैं मोदी जी की रैली को ख़राब करने के लिए बैठी हैं, क्योंकि बात ही इस तरीके से समाचार चैनलों के माध्यम से कही गई।
आपके लिए पर्सनली क्या चेंज फील करते हो आप अपने अंदर इस घटना के बाद?
मेरे अंदर तो ये लगता है मुझे कि अब जो है किसी तरीके के, मतलब उस दौरान 2 दिनों के दौरान मेरे मन में ये रहता था कि मैं सस्पेंड हो जाऊँगा और पारिवारिक जवाबदेही मेरी, मतलब मैं कह नहीं पाऊँगा, घर वालों का सामना नहीं कर पाऊँगा कि अरे यार अब क्या होगा, या जांच वाँच बैठ सकती है मुझ पे, मतलब इस तरह के वो थे कि मतलब परिवार वालों को मैं किस तरीके से फेस कर पाऊँगा, और कुछ बदलेगा नहीं, चीज़ें सामान्य नहीं हो पाएंगी। उसके बाद ये सब कुछ हो जाने के बाद मुझे ये लगा कि अब जो है किसी तरीके आंदोलन में शरीक होने से मुझे भय नहीं लगता है कि हाँ ठीक है 2-3 दिन का आंदोलन तो आदमी देख लेगा, या दिन भर, मतलब मुझे ये पता चला कि मैं 2 दिन लगातार खड़े रह सकता हूँ बिना खाए पिए, और अगर कायदे की बात हो तो वो मतलब किसी तीसरे के आंदोलन के लिए एक चेतना जगी कि हाँ ठीक है गलत हो रहा है तो उस पर बात की जा सकती है, पोस्ट लिख सकते हैं हम, मतलब मतलब मुझे पहले डर लगता था कि मैं इस तरह की बात पोस्ट में लिखूंगा तो मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो हो सकता है कि वो नाराज़ हो जाए, गलत भी हो रहा है तो मैं डरता था बात करने से। लेकिन अब मुझे इस बात का भय नहीं रहता है कि क्या होगा, मैं तैयार रहता हूँ किसी तरीके की, मतलब इस तरह की गलत चीज़ होगी तो व्यक्तिगत तौर अकेले भी खड़ा रहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि खड़ा रहने की हिम्मत आ गई है 2 दिन में उनके साथ रहने से।
आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो,
क्या विश्वविद्यालय को लेकर?
नहीं, जनरली अपने पर्सनली करियर में। और
करियर में मुझे लगता है कि मैं लिटरेचर में कुछ बेहतर कर पाने के लिए प्रयासरत हूँ, और कविताएं लिख पाता हूँ तो मैं उधर कुछ करूँगा, लेकिन पत्रकारिता मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, तो अगर परिस्थिति और चीज़ों ने साथ दिया तो मैं पत्रकारिता भी करूँगा, लेकिन मुझे कविताएं लिखना बहुत पसंद है, तो मैं लिटरेचर में कुछ करना चाहता हूँ, मे बी कि वो कविताएं प्रस्तुत करने का एक बेहतर क्रम हो सकता है, या कुछ भोजपुरी के लिए फोक पर काम करने की इच्छा है मेरी। तो मैं भोजपुरी पर कुछ काम करूँगा ऐसा जो शायद उल्लेखनीय हो जाए मेरे जीवन में, तो भोजपुरी पर काम करना है मुझे एक तो ये है। बाकी विश्वविद्यालय के अंदर इस आंदोलन से अगर देखा जाए तो ये हुआ है कि प्रतिरोध की चेतना जगी है। मतलब 2 साल पहले तक लाइब्रेरी इशू से पहले तक, लाइब्रेरी इशू में तो मतलब वही बात है ना, दुष्प्रचार इस तरीके से चीज़ों को प्रचारित कर दिया गया कि उन 9-10 लोगों के अलावा ये बताया गया कि यही 9-10 लोग हैं जो चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। मतलब वही सामान्य अगर एक छात्र है जो जिसको बहुत पढ़ने से मतलब है, वो नहीं सोच पाता था कि लोग ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लड़कियों वाले आंदोलन से ये हुआ कि उन्हें ये पता चला कि नहीं, वो लोग तो ठीक थे ही, ये प्रशासन भी कहीं ना कहीं गलत है। मतलब कोई बदलाव होता था विश्वविद्यालय के अंदर, कोई नया नियम बनता था तो कोई पूछ नहीं जाता था कि क्यों बन रहा है ये, लोग उसको सामान्य तौर पर ले लेते थे। जैसे कि अगर लंका बाकी सारे गेट रात को 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे, ऐसा अगर नियम आया तो किसी को बहुत मतलब परेशानी सबको होती थी, लेकिन कोई उलट के पूछ नहीं सकता था, या RTI जैसा कोई चलन नहीं था कि डाल के पूछ ले, देख लेंगे क्या है। इन 2-3 आंदोलनों से, लाइब्रेरी के इशू से, लड़कियों वाले इशू से, एक ये हुआ कि अगर कुछ भी बदल रहा है ना विश्वविद्यालय के अंदर, तो ये लोग जानना चाहते हैं कि ये क्यों बदल रहे हैं, या एक बार उलट के पूछने की हिम्मत आ गई है लोगों में कि हाँ ठीक है, कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। और वो बहुत सही है, धीरे 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 चीज़ें प्रभावित करेंगी। पहले डर लगता था लड़कियों को, लड़कों को, अब नहीं लगता है उन लोगों को, ये समझ में आता है कि वो डरते नहीं हैं। माहौल भी थोड़ा बहुत बदला है कि मतलब टीजिंग जैसी चीज़ें थोड़ी कम हुई हैं, ये टीजिंग और ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत आवश्यकता है, ज़रूरी है। प्रशासनिक तौर पर बहुत ढीला है विश्वविद्यालय, अनर्गल तरीके से चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, किसी का कुछ भी बोलना, जिम्मेदार लोगों का बेहुदा रवैया है जिस पर दुखी हुआ जा सकता है, हाथ में नहीं है कुछ तो क्या ही कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।